तारीख 21 जनवरी दिन मंगलवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूं मानसी दास। दिल्ली में केजरीवाल के सामने बीजेपी और कांग्रेस ने उतारे उभरते नेता, लेकिन क्यों?
विधानसभा के चुनाव में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं ले रही, या उसने पराजय स्वीकार कर ली, या उसको कहीं पर अपनी विजय की संभावना दिख रही है कि वो मंद मंद मुस्करा रही है।
सुनवाएंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खास बातचीत।
बिना उत्तर प्रदेश से हारे हुए भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति से नहीं हटाया जा सकता।
तो अब उसके लिए आप आगे क्या करने वाले?
हम लगातार काम कर रहे हैं और कोई स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं कि आपको बताएं।
होगी राम नाम के कारण सितम सहते राम नामी पंथ के लोगों की कहानी, और बीबीसी के खजाने से भी होगी खास पेशकश। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। दिल्ली की एक अदालत ने भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर को दिल्ली आने की अनुमति दे दी है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामा मस्जिद पर हजारों की भीड़ के साथ प्रदर्शन करने पर जेल भेजे गए चंद्रशेखर को 4 सप्ताह तक दिल्ली न आने की शर्त पर जमानत दी गई थी। अब अदालत ने कहा है कि वो अपना इलाज कराने या राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस को पहले से जानकारी देकर दिल्ली आ सकते हैं। चंद्रशेखर ने कहा है कि वो दिल्ली में आंदोलन कर रही महिलाओं के बीच भी जाएंगे। लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में निकाली गई रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार इस कानून पर पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। सीएए के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो भी रहे हैं। लखनऊ की एक रैली में अमित शाह ने कहा,
ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो, हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खिलाफ तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने उन्हें कयामत का पैगंबर बताते हुए कहा कि दशकों से उनकी भविष्यवाणियां गलत साबित होती रही हैं। दुनिया भर से आए उद्योगपतियों और नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये सकारात्मकता का वक्त है और लोग सपने देखना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रचनात्मक बाजार वाली अर्थव्यवस्था किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। दावोस में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका में व्यापार के लिए अपार संभावनाएं हैं। अपने भाषण के अधिकतर हिस्से में ट्रंप ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया, जिसका स्पष्ट मकसद चुनावी साल में अमरीकी मतदाताओं को रिझाना है। उन्होंने चीन के साथ अपने व्यापार समझौते का भी जिक्र किया, साथ ही मैक्सिको और कनाडा के साथ हुए नाफ्टा एग्रीमेंट की भी बात की। इसी कार्यक्रम में शामिल हुई स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा,
You say children shouldn't worry. You say just leave this to us. We will fix this.
आप कहते हैं कि बच्चों को चिंता नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं कि इसे हम पर छोड़ दीजिए, हम ही इसे ठीक करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। इतने निराशावादी होने की जरूरत नहीं है, और फिर कुछ नहीं, बस खामोशी, या खामोशी से भी बदतर खोखले शब्द और वादे जो ये दर्शाते हैं कि पर्याप्त काम नहीं हो रहा है। दूसरी ओर अमेरिकन सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक चाहते हैं कि यह प्रक्रिया जल्दी हो जाए। दोनों धड़ों को अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। डेमोक्रेट्स चश्मदीद और सबूत पेश करना चाहते हैं। फ्रांसीसी सरकार इस साल के अंत तक अमरीकी डिजिटल सेवा कंपनियों से टैक्स न लेने के लिए तैयार हो गई है। जवाब में अमरीका का कहना है कि वो फ्रांसीसी उत्पादों पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाएगा। अमरीका ने शैंपेन, कॉस्मेटिक्स और पनीर जैसे उत्पादों पर $2.5 अरब तक का अतिरिक्त कर लगाने की धमकी दी थी। फेसबुक, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों पर फ्रांस में इस साल अप्रैल से 3% कर लगने वाला था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और bbchindi के फेसबुक पन्ने पर भी लाइव सुन रहे हैं। 31 जनवरी तक कार्यक्रम दिनभर का सीधा प्रसारण आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर भी सुना जा सकेगा। इस वक्त पूरे देश की नजरें दिल्ली यानी राजधानी के विधानसभा चुनावों पर है, जहां 8 फरवरी को मतदान होने हैं। यहां फिलहाल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है और माना जा रहा है कि यहां मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होने वाला है। यहां की कुल 70 सीटों में से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाली सीट है नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनके मुकाबले में उतारा है सुनील यादव को और कांग्रेस से हैं रोमेश सभरवाल। सुनील यादव पेशे से वकील हैं और बीजेपी युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं रोमेश सभरवाल यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद जोशी से।
जो सुनील यादव बीजेपी ने उतारा है और रोमेश सभरवाल को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, दोनों युवा नेता हैं, अपेक्षाकृत कम उम्र हैं, उनके पास कोई बड़ा पुराना अनुभव नहीं है चुनाव जीतने का या लड़ने का, तो इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। पर यह भी है कि इसके पहले 2015 में भी बीजेपी ने जो उतारा था नूपुर शर्मा को, वो भी काफी नई प्रत्याशी थी और पर वो अपेक्षाकृत नई थी, लेकिन 2013 में जरूर विजेंद्र गुप्त और शीला दीक्षित चुनाव लड़े थे और विजेंद्र गुप्त भी उनके पुराने सीनियर नेता हैं। पर इस बार लगता है कि दोनों पार्टियों ने कोई संकेत दिया है कि शायद या तो वो बहुत बड़ी चुनौती पेश नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी युवा नेता के हाथों हारवाना चाहते हो। तो कह नहीं सकते क्या गणित है, क्या योजना है, क्या विचार है, क्योंकि चुनाव आमतौर पर नेताओं के अलावा बहुत सारे जो समीकरण है इलाके के वोट के उस पर निर्भर करते हैं। नई दिल्ली क्षेत्र से एक और चीज है कि 35 के ऊपर तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने वहां पर पर्चे भरे हैं। एक ये भी है कि बहुत ज्यादा प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या अपना नाम लोग ऊंचा रखने के लिए आ रहे हैं या कोई और वजह है, अभी इतना समझ में नहीं आता। अभी नाम वापसी के बाद थोड़ा स्पष्ट होगा कि क्या है।
लेकिन किसी बड़े नाम को ना उतारना, क्या इस बात के संकेत भी हैं कि थोड़ा डर है?
ये बात सोची जा सकती है और सच ये है कि बीजेपी ने तो कम से कम पूरी दिल्ली से कोई ऐसा बड़ा नेता ही नहीं उतारा जिसको आप कम से कम केजरीवाल के मुकाबले मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी मान सके। मुझे तो लगता है कांग्रेस और पार्टी ने और बीजेपी दोनों ने ही अभी तक फिलहाल कोई ऐसा वो नहीं दिखाया है जिससे लगे कि वो बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने पेश करने जा रहे हैं। मतलब अनेक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक हद तक कांग्रेस का तो लग भी रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो कि अभी हाल में लोकसभा के चुनाव में भारी जीत लेकर के आई है और जिसके कारण आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी लोकसभा के चुनाव में वोट पाने में, वो पार्टी विधानसभा के चुनाव में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं ले रही, या उसने पराजय स्वीकार कर ली, या उसको कहीं पर अपनी विजय की ऐसी संभावना दिख रही है कि वो मंद मंद मुस्करा रही है और चुनाव की चालें चल रही है।
नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर क्यों नहीं दिख रही हलचल, विश्लेषण कर रहे थे प्रमोद जोशी। इधर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शाहीन बाग में लगातार धरने पर बैठी महिलाओं के नेताओं के एक समूह ने आज दिल्ली के एलजी अनिल बैजल से बात की। महिलाओं की तरफ से सैयद तासीर अहमद ने कहा कि एलजी ने उनकी मांगों को गृह मंत्रालय को बढ़ाया है।
हम इसी मकसद से आए थे कि हमारी बात आगे पहुंचाई जाए गृह मंत्रालय तक, प्रधानमंत्री तक। वो प्रोसेस शुरू हुआ, हमारा सबसे पहला काम यही है, बातचीत शुरू हुई। एम्बुलेंस तो पहले से हम लोग निकलवा रहे थे, एम्बुलेंस में कोई दिक्कत नहीं थी, स्कूल वैन भी निकलवा रहे थे, बसेस पुलिस खुद रोकी भी थी, नहीं आने दे रही थी। अब ये लोग भी उनको कहेंगे कि भाई आप बसेस को आने दीजिए, हमारे वॉलेंटियर वहाँ पे लग करके सारी बसेस को निकलवाएंगे। सुबह 6 से 8 बजे तक बसेस का शेड्यूल रहता है, दोपहर में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक या जो भी 4 बजे तक रहेगा, वो हम लोग मुस्तैदी से खड़े होके उसको आराम से निकलवाएंगे। ये हमने एश्योरेंस दिया परसों से। जी अभी परसों बिल्कुल हमारा बिल्कुल कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है उसको देखते हुए हम आगे की रणनीति तय करेंगे।
शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी रहेगा, बता रहे थे महिलाओं की तरफ से सैयद तासीर अहमद। और अब रुख उत्तर प्रदेश का। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सुर्खियों में बना हुआ है। नागरिकता कानून के विरोध और आगामी विधानसभा चुनावों जैसे मुद्दों पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात की बीबीसी हिंदी के संपादक मुकेश शर्मा ने। आप भी सुनिए।
सीए और एनआरसी पे जो प्रोटेस्ट देश भर में देखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी जो प्रोटेस्ट हुआ उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई भी हुई है, उसकी भी चर्चा हो रही है। इन आंदोलनों के नेतृत्व में अखिलेश जी कहाँ हैं?
ये बड़ा अच्छा सवाल कर लिया, और इसलिए सवाल कर लिया कि आज की राजनीति में प्रेस में रहना भी ज़रूरी है। जो बात लोकसभा में बहस में रही, राज्यसभा में बहस में आ गई बातें, आखिरकार बीजेपी को क्या लग रहा है कि वो समझाने निकल रहे हैं? उनका पूरा नेतृत्व लोगों को ये समझा जाने में लगा हुआ है कि सीएए एनआरसी उनके खिलाफ नहीं है, और वहीं पूरा देश और दुनिया में दिखाई दे रहा है कि लोग इसके खिलाफ हैं।
लेकिन सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था जिस समय, उस प्रोटेस्ट में क्या जो और जो ये कहा गया कि छात्रों का, युवाओं का प्रोटेस्ट है, उसमें आप नहीं दिखाई पड़े?
ये हर भारतीय का प्रोटेस्ट था, हर भारतीय लोग इसके खिलाफ हैं, और इसीलिए जिस दिन पूरा देश और समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि विधानसभा में हमारे विधायक इसका विरोध करेंगे, सभी हमारा नेतृत्व जो विधानसभा में था वो विधानसभा में विरोध कर रहा था, लोग विधानसभा के जो दरवाजे पे ताला लगा उसको ताला तोड़ना चाहते थे।
पर सड़कों पे क्यों नहीं थे?
और सड़कों पे समाजवादी पार्टी थी क्योंकि आपने दिखाया नहीं।
लखनऊ में
सबसे पहले लाठी समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाई। मैं कहां था? 19 तारीख को मैं धारा 144 यहां से लेकर के लखीमपुर तक तोड़ता गया, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया, रोका नहीं मुझे। जब मैं अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलना चाहता था, मैं जाना चाहता था उनसे मिलने सीतापुर में, उन्होंने रेलवे का फाटक गिरवा दिया कि जिससे मैं आगे ना जा पाऊं। और आप देख लीजिए पूरे जिले में कौन लोग आगे थे। सवाल आगे पीछे का नहीं है, यह सवाल हमारा नहीं है, पूरी पार्टी सड़कों पर थी, पूरी पार्टी ने आंदोलन किया।
पार्टी होती है, लेकिन जब एक नेतृत्व होता है, एक चेहरा सामने आता है, तो उससे विरोध करने वाले एक जो समूह होता है उसको एक
समाजवादी पार्टी और हमारा विरोध इसी तरीके से, और लगातार हम विरोध कर रहे हैं इसका।
सरकार ये कह रही है कि जो लोग विरोध प्रदर्शन हुआ और उन्होंने उसका वीडियो कैमरा से उसकी शूटिंग भी करवाई, और जो लोग उसमें सामने आए हैं उसके खिलाफ उन्होंने नोटिस इशू किए हैं उनकी वसूली के बारे में।
ये तो अच्छा किया उन्होंने, अगर रिकॉर्डिंग की है, अगर रिकॉर्डिंग के आधार पर आप वसूली कर रहे हैं तो जिन निर्दोष लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके घर तोड़े गए, जिनके कैमरे तोड़े गए, जिनके घरों के दरवाजे तोड़े गए, मुजफ्फरनगर में जिस परिवार के घर पर शादी होने जा रही थी, आप उसके घर के सब सामान लूट आए, ज्वेलरी लूट के लेके आ गए, इसकी भरपाई सरकार क्या करेगी कि नहीं करेगी? और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके तहत क्या आपने कार्रवाई की है?
क्या ये एक स्ट्रैटेजी है कि समाजवादी पार्टी के अन्य नेता तो दिखाई पड़ेंगे लेकिन अखिलेश जी खुद सड़कों पे विरोध का नेतृत्व करते नहीं दिखेंगे, ताकि हिंदू मुसलमानों का जो वोट है उसमें एक बैलेंस रखा जा सके?
आप मेरे नाम से हिंदू मुसलमान की खाई क्यों पैदा करना चाहते हो?
नहीं, मैं ये चाहता हूँ
फिर देश के जितने भी वरिष्ठ नेता हूँ उनको भी घर पे जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे हैं?
नहीं, सड़कों पे नेतृत्व करने
सबके सब आइए, हमारा तरीका यही है नेतृत्व का, हमारे काम करने का तरीका यही है, इसलिए क्योंकि हम लड़ाई में कामयाब होना चाहते हैं। अगर बीजेपी लोकसभा में कम नहीं होगी, राज्यसभा में कम नहीं होगी, आप इन कानूनों को नहीं बदल सकते हैं। बिना उत्तर प्रदेश से हारे हुए भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति से नहीं हटाया जा सकता।
तो अब उसके लिए आप आगे क्या करने वाले?
हम लगातार काम कर रहे हैं, और कोई स्ट्रेटेजी जरूरी नहीं है कि आपको बताएं। जितना भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई बताने में कामयाब हो जाएंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी नीचे चली जाएगी।
तो आप ये समझाने का काम अकेले करेंगे या जो बाकी विपक्षी दल हैं उनको साथ?
समाजवादी पार्टी अकेले करेगी उत्तर प्रदेश में, किसी दल के साथ नहीं खड़ी होगी। कि समाजवादी पार्टी अकेले ही जब चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर लेगी।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात कर रहे थे बीबीसी हिंदी संपादक मुकेश शर्मा। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे बीबीसी संवाददाता नारायण बारेठ के अनुभव। और अब वक्त है एक खास रिपोर्ट का। सबके हैं राम, ये बात तो सदियों से धर्म ग्रंथों में कही गई है, लेकिन राम नाम जपने के लिए किसी जाति को जुल्म सितम सहना पड़ा हो उसकी गवाही देते हैं छत्तीसगढ़ में फैले राम नामी पंथ के लोग। इनके राम किसी मंदिर में नहीं बल्कि इनके तन मन में बसते हैं। राम के नाम पर जीना और राम के नाम के साथ ही दफन हो जाना, यही है रामनामी लोगों की जिंदगी की कहानी। लेकिन अब रोजी रोटी की मजबूरी की वजह से पारंपरिक राम भक्ति का रंग फीका पड़ने लगा है। सुनिए छत्तीसगढ़ से बीबीसी संवाददाता पायल भुवन की रिपोर्ट।
इसमें कारीगर नहीं मिल रहा है, मैं तो सर्वांगसरी में लिखाने की इच्छा है। 82 है, अब जाने को तैयार है, ज्यादा दिन नहीं है, तो ये खाली ना रह जाए, नाम से परिपूर्ण होकर के इसमें अंदर में चला जाए।
मन में राम, तन में राम, घर आंगन में राम, और चारों तरफ सिर्फ राम राम की पुकार। ये है छत्तीसगढ़ के राम भक्त डोमराम खूंटेराम। रामनामी पहनावे में 82 साल के डोमराम उस वक्त को याद करते हैं जब उन्होंने माथे पर राम नाम का गोदना गुदवाया था। 16-17 साल की उम्र में गुदवाने पर उन्हें दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन श्रद्धा के आगे सब झेल लिया। अपने शरीर पर राम राम गुदवाने वाले डोमराम इकलौते भक्त नहीं हैं, बल्कि ऐसा करने वालों का एक पंथ बन गया है। इनकी पहचान भी रामनामी के तौर पर होती है। ये शरीर के हर हिस्से को राम नाम से भर देते हैं। इस पंथ का जन्म कैसे हुआ और गोदने का ये रिवाज क्यों और कैसे शुरू हुआ, इसके कोई ठोस दस्तावेज तो नहीं, लेकिन रामनामी समाज के अध्यक्ष इससे जुड़ी एक कहानी बताते हैं।
परशुराम जी के नाम का बाबा चार पारा का है, अब बुला के उसको कच्चा मस में राम नाम लिख दिया, कच्चा मस में, और उसको कहा कि इसको पक्की करा लेना, सुई से पक्की करवाना। तो वो आया आकर के फिर राम राम को लिखवाया, ये नाम का जन्म उसी दिन से है।
इसके बाद इलाके के कई लोग परशुराम को अवतारित पुरुष मानने लगे और आसपास की दलित और पिछड़ी जातियां इससे जुड़ती चली गईं। लेकिन अपने शरीर पर राम का नाम लिखवाने के लिए इन लोगों को कभी भारी प्रताड़ना भी सहनी पड़ी थी, महतराम बताते हैं।
और राजा लोग यहाँ भेड़गांव के जमींदार लोग उसको दुख तकलीफ देते थे, कई प्रकार के उसके प्रति बाधा पहुँचाते थे। एक बार मुकुट को आगे लगा दिया, एक बार उसको लकड़ी में ऐसे पकड़वा के नीचे में कांटा रख के उसको मारने लगा।
बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। जानकार बताते हैं कि सवर्णों ने राम भक्ति के लिए कथित तौर पर उन पर जुल्म किए। देश की आजादी से पहले एक वक्त ऐसा भी था जब इस संप्रदाय के लोगों को राम नाम जपने पर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। सवर्ण जाति के लोगों ने इन्हें राम नाम ना जपने की हिदायत दी, जिस पर इनका जवाब था वो भगवान ही किया जो इंसान के नाम जपने से अपवित्र हो जाए। आजादी के बाद इन रामनामियों को समानता का अधिकार तो मिला, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या घटने लगी। वजह थी शरीर पर टैटू होने के चलते नौकरी मिलने में दिक्कत।
आपके बच्चे तो करे नहीं, तो ऐसे हैं जिनका मन लगता है उन्हीं भजन भक्ति करे, रामनाम सबका मन नहीं।
रामनामी पंथ और भक्ति की परंपरा ने एक समय इन दलित लोगों को ताकत दी थी। जाति के बंधन टूटे थे और इन्होंने तुलसी के राम को अपना आराध्य बना लिया था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ राम की ये भक्ति उनकी रोजी रोटी की राह मुश्किल बना रही है। इसलिए युवा पूरे शरीर को गुदवाने की परंपरा से दूरी बना रहे हैं। 16 साल के बंजारे भी इन्हीं में से एक हैं।
सब यंगेस्ट हो गए हैं, बॉय वगैरह सब अपने लुक्स को भी देखते हैं, और नौकरी वगैरह में भी गोदना शरीर में रहता है तो उसमें नौकरी वगैरह में भी प्रॉब्लम होती है, इससे लेकर गोदना भी कम हो गया है थोड़ा।
कभी जातिगत बंधन को तोड़ने के लिए शुरू हुए इस रामनामी पंथ को मानने वाले लोग आधुनिकता के दबाव में अब छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में ही सिमट कर रह गए हैं।
भूंजा है न सीना है न गर्दन है न पेशानी, की निर्लेप नारायण कहां चंदन लगाऊं मैं।
रिपोर्ट सुना रही थी बीबीसी संवाददाता पायल भुयन। कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है और वक्त है बीबीसी के खजाने से आपको एक विशेष रिपोर्ट सुनाने का। आज आपको सुनवाते हैं एक खास सीरीज, स्वप्नलोक की झलकियां। इस सीरीज को पिरोया था शिवकांत ने और इसका पहली बार प्रसारण हुआ था नवंबर 1998 में।
स्वप्नलोक। हम अपना लगभग एक तिहाई जीवन नींद में बिताते हैं और जो बचता है उसमें से भी कुछ ये दुआ मांगने में बीतता है कि हमारे बच्चे थोड़ी देर और सोया करें, और कुछ बुढ़ापे में नींद की दुआएं मांगने में बीत जाता है। हम नींद में जन्म लेते हैं और जीवन पूरा होने पर हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाते हैं। मगर ये नींद है क्या और क्यों आती है और अक्सर रात को ही क्यों आती है?
दार्शनिक और विचारक हजारों वर्षों से इस पहेली को बूझने का प्रयत्न करते आए हैं और आजकल वैज्ञानिक इसका उत्तर खोजने में लगे हैं। कुछ यूनानी विचारक मानते थे कि नींद में व्यक्ति की चेतना शरीर से बाहर चली जाती है और बाहर से अच्छी बुरी चेतनाएं शरीर में आकर सपनों को जन्म देती हैं। वे सपनों की व्याख्या भावी संकेतों के रूप में करते थे।
भारत के विचारक नींद को शरीर के स्वास्थ्य और विकास के लिए वरदान मानते हुए भी चेतना के लिए एक मोहमयी अवस्था मानते थे। मॉन्ट्रियल के कॉन्कॉर्डिया विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन पीठ की प्रोफेसर डॉक्टर टी एस रुक्मिणी।
स्वप्नावस्था में तो बाहर का दुनिया अस्तमित हो जाता है और जो स्वप्नों का अनुभव होता है वो इंद्रियों के द्वारा नहीं होता पर मन के द्वारा ही होता है। पूर्व संस्कार जो होता है ना, उनका द्वारा स्वप्नावस्था में एक अनुभव हो जाता है।
विज्ञान की इस सदी में भी 50 के दशक तक नींद की विभिन्न अवस्थाओं, उनके स्वभावों और रहस्यों की जानकारी नहीं थी। आम धारणा यही थी कि दिमाग जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद थक जाता है तब शरीर में सुस्ती दौड़ाकर नींद की तैयारी करता है। लगभग 8 घंटे के आराम के बाद दिमाग फिर नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करता है।
सोए हुए लोगों के दिमाग की गतिविधियों के चार्ट बनाने वाली मशीन EEG से पता चला कि नींद के कुछ हिस्सों में हमारा दिमाग जागते दिमाग से भी ज्यादा व्यस्त रहता है। व्यस्तता के ये दौर रात में 4-5 बार करीब 1.5-1.5 घंटे के अंतराल के बाद आते हैं। इनके दौरान सोने वाले व्यक्ति के हाथ पांव तो एकदम निष्क्रिय रहते हैं मगर बंद पलकों के नीचे आंखों के कोए या गोले तेजी से घूमते हैं।
नींद के इस विचित्र दौर की पहचान आंखों के घूमते गोलों या कोयों से की गई थी, इसलिए इस नींद का नाम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या REM नींद रखा गया। इसके दौरान हमारा दिमाग सोते हुए भी जागृत अवस्था से ज्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए इसे पैराडॉक्सिकल स्लीप या विरोधाभासी नींद भी कहा जाता है। लेकिन दिमाग की क्रिया को मापने वाले EEG यंत्र से ये भी पता चला कि REM नींद के अलावा हमारी बाकी नींद भी गहराई के हिसाब से कई तरह की होती है। ब्रिटेन की मस्तिष्क विशेषज्ञ डॉक्टर सूजन ग्रीनफील्ड।
There are 4 different stages to sleep that can be distinguished each one by a different pattern of brain waves.
हमारी नींद की गहराई के हिसाब से 4 अलग-अलग अवस्थाएं हैं जिन्हें दिमाग की अलग अलग क्रिया तरंगों से पहचाना जा सकता है। नींद का पहला चरण दिमाग की जागृत अवस्था जैसा ही है। दूसरे चरण में पहुंचने पर दिमाग की क्रिया तरंगों में 1-2 अंतर साफ नजर आने लगते हैं। तीसरी अवस्था में अंतर और स्पष्ट हो जाता है और चौथी अवस्था में पहुंचते पहुंचते तरंगें एकदम बदल जाती हैं।
नींद आते ही हमारे दिमाग में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनसे शरीर का तापमान और खून के प्रवाह की रफ्तार कम हो जाती है। हमारे दिमाग में धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं और इंद्रियों की संवेदनशीलता तेजी से घटने लगती है। हम सभी रात में कई बार ये सपने देखते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को सपने याद रह पाते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के नींद विशेषज्ञ डॉक्टर इमैनुअल मिनियो इसे सपनों का एक दिलचस्प पहलू मानते हैं।
One of the other fascinating aspects of REM sleep, which I think is clearly understudied or underappreciated,
REM नींद या सपनों वाली नींद के जिस दिलचस्प पहलू पर मेरे ख्याल में कम काम किया गया है या कम ध्यान दिया गया है वो है सपनों का याद ना रहना। सपनों में तो आप चीज़ों की कल्पनाएं करते हैं, ये कल्पनाएं एकदम नई छवियां, नई चीज़ें लिए होती हैं जो वास्तविक नहीं होती, लेकिन ये छवियाँ जागते ही रफूचक्कर हो जाती हैं।
सपनों का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि सपने सभी को आते हैं, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में पलने वाले शिशु भी सपने देखते हैं। गर्भ में रहने वाला शिशु ज्यादातर समय REM या सपनों की नींद में बिताता है।
ऐसा लगता है कि सपने लेना दिमाग का सहज स्वभाव है, लेकिन अगर ये सही है तो फिर जानवरों को भी सपने आने चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसी मशीन नहीं बन पाई है जो सोते हुए इंसान या जानवर के दिमाग के सपनों को तस्वीरों में रिकॉर्ड कर सके, लेकिन जानवरों के दिमाग के EEG चार्ट और सोते समय उनके अंगों में होने वाली फड़कन ये संकेत देती है कि जानवर भी सपने देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी मानसिक उलझने सुलझाने के लिए ही दिमाग सपनों के जाल बुनता हो?
हम आपको बीबीसी के खजाने से पुराने प्रस्तोताओं के खास कार्यक्रमों और सीरीज की झलकियां तो सुनवा ही रहे हैं। कल से हम आपको बीबीसी के पुराने और जाने माने संवाददाताओं के अनुभव भी हमने आपको सुनवाना शुरू किया है। कल आपने सुने बीबीसी के बिहार संवाददाता मणिकांत ठाकुर की आवाज, आज सुनिए बीबीसी राजस्थान संवाददाता नारायण पारेठ के अनुभव।
बीबीसी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। अतीत की गलियों से गुजरो तो वहां बीते लम्हों की यादों के फूल खिले मिलते हैं। इनमें कुछ व्यक्तिगत है तो कुछ पेशेवाराना। सहसा वे चेहरे और किरदार आंखों में उतर आते हैं जिनकी सरपरस्ती में काम किया, सुख दुख काटा और नसीहतें ली। यह कोई 14 साल पुरानी बात है, तब मैं एक गंभीर सड़क दुर्घटना से निढाल हो गया था। दौड़ती भागती जिंदगी कमरे की चार दीवारी और बिस्तर तक महदूद होकर रह गई थी। दफ्तर से किसी साथी ने फोन कर अच्छी होटल का पता ठिकाना पूछा जहां बीबीसी की दक्षिण एशियाई कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी थी। जब होटल का स्थान और वक्त तय हो गया, अटला जी ने मुझे फोन किया और कहा तुम्हें कैसे भी उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है। ये भी कहा बीबीसी के साथी आएंगे और तुम्हें कॉन्फ्रेंस स्थल तक ले चलेंगे। मैं व्हीलचेयर पर कॉन्फ्रेंस स्थल तक पहुंचा तो सभी लोग ऐसे खड़े मिले जैसे कोई अपनों की आगवानी करने खड़ा हो। उस होटल में लिफ्ट नहीं थी, लिहाजा मुझे बीबीसी के साथी एक चेयर पर बैठाकर दूसरी मंजिल तक ले गए। कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो अचला जी और उस वक्त एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख अब्बास नासिर साहब ने सबका स्वागत किया। फिर कहा यह कॉन्फ्रेंस किसी भी शहर में की जा सकती थी, लेकिन तब जयपुर की नुमाइंदगी नहीं हो सकती थी। हमने नारायण के लिए यह मकाम जयपुर रखा है। ये शब्द मेरे दिलोजान को छू गए। उस अपाहिज जिंदगी की आंखों ने पानी का सैलाब तो रोक लिया, लेकिन कुछ आंसू दिल के दालान पर जरूर बह निकले। मुझे लगा गोया मेरे जख्म भर गए हैं, टूटी हड्डियां जुड़ गई है। वहाँ बीबीसी के वो सब चेहरे थे जिन्हें हम सुनते रहे हैं, लेकिन यह उनकी रूह से रूबरू होने का मौका था। हादसा लम्हों में हो जाता है, लेकिन ठीक होने में वक्त लगता है। उन दिनों सीमा चिश्ती दिल्ली में हमारी संपादक थी। उनका इसरार था कि मुझे दिल्ली के अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहिए। किसी मदद से वहां पहुंचा तो सीमा जी और नगेंद्र शर्मा तैयार खड़े मिले। सीमा जी ने व्हीलचेयर संभाली और एक से दूसरे डॉक्टर तक ले गई, हिम्मत दी, हौसला दिया। यह देखकर मेरा परिवार और साथ के लोग अभिभूत हो गए। इसी सहारे से मैं फिर खड़ा हो पाया। वो दिन हमेशा याद रहेगा जब गधों के मेले पर स्टोरी भेजकर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। इनमें गधों का दुख दर्द था। इसका समापन ऐसा था कि हर गधा अपनी बेबसी का बयान कर रहा है, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी में गधों का दर्द या तो कोई गधा समझ सकता है या फिर नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर। मुझे लगा कि इस स्टोरी पर डांट पड़ सकती है, लेकिन यह कहानी प्रसारित हुई और छोटी सी दाद भी मिली। हर इंसान के भीतर यादों का कोई शिलालेख होता है। कभी सुख होता है, कभी दुख। किसी के लिए धन दौलत तो किसी के लिए यादों की ये गठरी पूंजी होती है। यही जिंदगी है। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
दिल्ली की एक अदालत ने भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर को दिल्ली आने की अनुमति दे दी है। लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में निकाली गई रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार इस कानून पर पीछे नहीं हटेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पर्यावरण कार्यकर्ताओं के खिलाफ तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने उन्हें कयामत का पैगंबर बताते हुए कहा कि दशकों से उनकी भविष्यवाणियां गलत होती रही हैं। फ्रांसीसी सरकार इस साल के अंत तक अमरीकी डिजिटल सेवा कंपनियों से टैक्स न लेने के लिए तैयार हो गई है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि उनके देश को अपना तेल और ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए अन्य विकल्प तलाशने चाहिए। चीन के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि देश में फैले खतरनाक वायरस को लेकर लीपापोती करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका का कहना है कि लीबिया में तेल के कुएं बंद करने से लीबिया में जारी मानवीय संकट और गहरा हो जाएगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला रविशंकर कुमार ने। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।